ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பிரபு பிரேமி, பிரபு பசந்த், பிரபு பிரிய அர்த்தாத் பாபா கா பஹத் பசந்த் பச்சே ஆப் ஹை, பாபா கா பஹத் பிரேமி பச்சே ஹை, பாபா கா தில் மே நயனோ மே பாஹோ மே சமாயா ஹுவா பச்சே. இஸ்கே லியே ஆப் லோகோ கோ யே ட்ராமா பாபா வா ஆப்கி பேரண்ட்ஸ் சுட்டி தியா பாபா கா கர் மே ஆனே கே லியே, ஆஜ் இஸ் பாப் தாதா கி யஜ்ஞ மே பேஹத் ஈஸ்வரிய பரிவார் கே பீச் மே விஸ்வ பரிவர்த்தன் கி இஸ் வேளே கே சமய பர் ஆப் சப் ஆத்மாயே கோயி பி ஆயு கித்னே பி ஹோ பரந்து ஆப் இத்தனே லக்கி ஆத்மா ஹே பாபா கா கர் மே பஹலே ஆகர் கே ஆப்கா ரஹனே கா ஹக் மிலா, அதிகார் மிலா. யே ஆப்கே லியே குஷி லாதா ஹே. இதர் ஆதே ஹோ தோ ஆப்கோ குஷி மிலா சச்மச். யே ஆனா ஹி ஏக் யோக் ஹே. ஜெய்ஸே ஆஜ் சப்ஜெக்ட் ஹே நா ராஜயோக். சப்சே பஹலே பாபா கி கர் மே ஆனா, ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலய மே படாயி படனே கே லியே ஆனா, வா யே ருத்ர ஜ்ஞான யஜ்ஞ மே அப்னி கம்மி கம்ஜோரியோ கோ வ்யர்த் சங்கல்போ கோ ஸ்வாஹா கர்னே கே லியே யோக் கி அக்னி த்வாரா வ்யர்த் சங்கல்ப் கஹோ, சன்ஸ்கார் கஹோ, ஸ்வபாவ் கஹோ, சோச் கஹோ, இன்கோ ஸ்வாஹா கர்னா யஜ்ஞ, இஸ்கோ கேதே ருத்ர கீதா ஜான் யஜ்ஞ. ஹம் கஹா பேட்டே ஹே, ருத்ர கீதா ஜான் யஜ்ஞ. இஸ் யஜ்ஞ மே ஆப் சபி பேட்டே ஹே, சிர்ப் தர்த்தி பர் நஹீ பேட்டே, சோஃபா பர் நஹீ பேட்டே, ஔர் யஜ்ஞ மே பேட்டே. ஜான் குண்ட ஹே பாபா. இஸ் தர்த்தி பர் ஜோ பி ஆத்மே ஆதே ஹே உன்கோ சூக்ஷ்ம வதன் மே பாப் தாதா நே வரதான் தேதா ஹே, பிளெஸ்ஸிங் தேதா ஹே, சக்தி தேதா ஹே. அச்சே ஸ்ரேஷ்ட சங்கல்ப் கரேங்கே நா உஸ் சங்கல்ப் கோ பூரா கரேகா, ஔர் ஜோ பாபா கோ யாத் கர்தே உஸ்கோ யே யோக கேதே. பாபா கோ யாத் கௌன் கௌன் கர்தே யாத் கரா கரோ. வா வா, வெரி குட். அப் பாபா கோ யாத் கர்தே இஸ்கே லியே பாபா நே ஆப் சப்கோ புலாயா, புலாயா நா, இஸ்கே லியே தாதியோ நே ஆப்கோ புலாயா. இஸ்கோ யாத் கோ பாபா கேதே யோக். பாபா கோ யாத் கர்னா ஹி யோக ஹே, ஔர் இஸ்கோ சஹஜ யோக, க்யூன்கி தூஸ்ரே லோக் சபி ஹட யோக் சிகாதே ஹே, பிராணயோம் சிகாதே ஹே, ஹாத் பாவ் ஹிலானா சிகாதே ஹே, வோ சபி அலக் ஹே, பரந்து யே புத்தி யோக ஹே. புத்தி சே பாபா கோ பேச்சானா, புத்தி சே பாபா கோ யாத் கர்னா, புத்தி சே பாபா கி குணோ கோ சமஜ்னா, புத்தி சே ஹம்கோ அப்னா ஜீவன் மே க்யா கர்னா க்யா நஹீ கர்னா, க்யா சங்கல்ப் கர்னா க்யா நஹீ சங்கல்ப் கர்னா, புத்தி கே அந்தர் க்யா பாதோ கோ ரக்னா க்யா பாதோ கோ பூல் ஜானா, கௌன்சி பாத் கோ யாத் கர்னா கௌன்சி பாத் கோ பூல்னா, துபாரா ரிப்பீட் பி நஹீ கர்னா, இஸ்கோ யோக கேதே. தூசரா ஜோ ஜிஸ்கோ யாத் நஹீ கர்னா உஸ்கோ யாத் கரேங்கே இஸ்கோ கேதே வியோக். வியோக் அபி ஆப் சபி கிஸ்கே லியே ஆயே ஹே, யோக சீக்னே கே லியே ஆயே, ஐசே ஹே நா, யோக சீக்னே கே லியே ஆயே. ஜிஸ்கி யோக கே மாத்யம் த்வாரா ஈஸ்வரிய குணோ கோ, ஈஸ்வரிய சக்தியோ கோ, ஈஸ்வரிய விஜன் அர்த்தாத் சங்கல்ப் க்யா பன்னா ஈஸ்வரிய சிக்ஷா கே அனுரூப் மே உஸ்கோ புத்தி மே ரக்னா, உஸ்கோ யே யோக கேதே. பாபா கி மஹாவாக்ய आज सुबह मुरली आप सभी सुना, कौन कौन सुना? वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे, कितनी तकदीरवान बच्चे। चलो एक दो पॉइंट सुनाओ आज की मुरली का, सुनाओ। क्या अच्छा, देखो शोर मचाते हैं, आतंक मचाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। किसी को दुख देना, उन बच्चों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं नहीं कहेंगे, असुर कहते हैं। अब तो फरिश्ते बनने वाले हैं। अच्छी और बताओ बताओ, ज्ञान की बात को खुशी रहेगा, ज्ञान की बातों को बुद्धि में रखना अर्थात खुशी, खुशी की होगी। और चलो ये बताए बताओ, खड़े हो गए हम, बताओ आ? अपनी ऊंची तकदीर बनाना है, इधर क्यों आए हैं? ऊंची तकदीर बनाना। आप बैठ बैठ, आप बैठ का क्या क्या है? रजिस्टर को खराब करना, आपका जिंदगी के रजिस्टर को खराब करना, बहुत अच्छे। ये सुनाए दूसरों को गाली ग्लानी नहीं करना, लून पानी नहीं होना। अच्छा चलो बहुत अच्छे, अभी बहुत अच्छे बच्चे रिपीट भी कर रहे अच्छी अच्छी बातों को। और सबसे पहले जो है योग अर्थात बाबा का महावाक्यों को याद करना ही योग है, बुद्धि योग, इसको ज्ञान योग। और बाबा जो कहता है उसको करना, उसको कर्म योग कहते हैं। बाबा जो कहे उसको हमको करना, बाबा जो सिखाता है वो सीखना, बाबा दूसरों को जो शक्ति ज्ञान देने के लिए कहता है वो ज्ञान देना, इसको ही कर्म योग कहते हैं। दूसरा कर्म करेंगे तो दोग तो अलग है, परंतु परमात्मा की जो बातें सुन करके उस बातों को दिमाग में रखना और उसी अनुसार चलना, उसी कर्म को करना, उसी संकल्पों को सोचना, इसको ही ज्ञान योग और कर्म योग भी कहते हैं। दूसरा योग नहीं, वो पाप योग है वास्तव में। इसके लिए ईश्वरीय कर्म करने का जो है संगम युग में हम बच्चों को सुअवसर मिलता है, शिक्षा मिलता है, वरदान मिलता है। इस समय में हम बाबा का बच्चे बनने का जो अवसर मिला है, अपने आप को पहचानने का, अपने भविष्य को पहचानने का, हम वर्तमान में क्या कर्म करना, इसी को ये राजयोग कहते हैं। क्योंकि इसको सहज रीति से करना, क्योंकि इसमें राजाओं का राजा बन सकते हैं, इसमें कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं, इसमें प्रकृति के ऊपर भी जीत पा सकते हैं, इसमें अपने, क्योंकि इसमें आज लिखा है राजयोग द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कला और सुखी परिवार बनाना, विश्व को बनाना, ये तीनों बातें इसमें जोड़ा हुआ। सबसे पहले राजयोग अर्थात बुद्धि, बुद्धि शुद्धिकरण करना। बुद्धि अच्छा है तो हर कर्म अच्छा होगा, होगा नहीं होगा? जिनका बुद्धि खराब हो जाता है उनको अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती, जिनको क्रोध आता है उनको बहुत बीमारी ज्यादा होता है। क्रोध है एक बीमारी का जड़ है। क्रोध किस किस को आता है, हाथ खड़ा करना, सचमुच बताना सबको, कभी कभी क्रोध आता है? अच्छा देखो, आज से आप सब भी एक करो, जो क्रोध आता है मना बीमारी को आवाहन कर रहा है, किसी के प्रति देख करके ईर्ष्या करना ये भी मनोविकार है, मन की बीमारी है। ये आदत बहुत बड़ी खराब आदत है, इससे मन भी खराब, चेहरा भी खराब, तन भी खराब और हर चीज खराब हो जाती। आपने देखा कब क्रोध आता है, वह किसी को ईर्ष्या करता है उसका चेहरा कैसे लगता है, चेहरे पर खुशी रहता है, रहता है? कौन कौन कहते हैं चेहरे पर खुशी रहता है जब क्रोध आता है तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, अपना चेहरा खराब होता है वो हाथ खड़ा करो जब क्रोध आता है तो। देखो आप सभी एक्सपीरियंसड हो गए, अभी आप सबको मालूम है जिस टाइम क्रोध आता है अपना चेहरा खराब होता है, ऐसा है ना? अपना ही चेहरा खराब होता है। जिनको अपना ही चेहरा खराब करते हैं उनको बुद्धिवान कहेंगे, ज्ञानवान कहेंगे, अच्छे कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? क्रोध करना ही सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है, उसकी लंबी बातें हैं, मैं इसमें ज्यादा अभी नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैंने कहा ईर्ष्या करना, वो भी बड़ी बीमारी की जड़ है। तीसरी बात, बाबा ने बहुत बातें बताया है, दूसरों की अवगुणों को, नेगेटिव बातों को, वा सुनी सुनाई बातों को, वा व्यर्थ संकल्पों का बातों को अपनी बुद्धि में रखना, उनकी बीमारी को अपनी बुद्धि में रखना, अपनी संकल्प में रखना, अपनी संस्कार में उसको समावेश कर देना। जैसे दूध में पानी डाल देते उसको समावेश हो जाता है, परंतु दूध की थिकनेस डेंसिटी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी दूसरों की व्यर्थ संकल्पों को अपनी मन में रखना, ये बाबा ने कहता, क्या कहेंगे उसको, धूर्त, विवेकहीन, बुद्धि कमजोर, दुर्बल बुद्धि, कमजोर बुद्धि, वो ज्ञानवान नहीं है। हंस क्या करता है, पानी और दूध को अलग कर देता है, कंकड़ और पत्थर को अलग कर देता है। इसके लिए बाबा का ज्ञान मिलता है राजयोग, उसको अलग करना है। इसके लिए किसी का भी अवगुणों का, कमजोरी का, व्यर्थ संकल्पों का, निंदा का, व ईर्ष्या का, व अपवित्र संस्कारों का नेचर को देख करके अपनी बुद्धि में रखना ही एक सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है। इसमें सबसे पहले अपना मन खराब होता है, उसके बाद में आंखें खराब होता है, उसके बाद में थन खराब हो जाता है। उनकी जिनको क्रोध आता है उस टाइम उनका देखो आंखें रेड बल्ब जैसा हो जाता है, डेंजर बल्ब जो है ना, डेंजर, और हार्ट में बीटिंग पल्पिटेशन ज्यादा जोर हो जाता है उनको, ऐसा हो जाता है उनको, उसका हार्ट बीटिंग ज्यादा हो जाता है, उसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके कारण शुगर कंप्लेंट हो सकता है, उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का शुरुआत हो सकता है। इसके लिए अभी बचपन में ही आप लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए, और समझ करके हमको कभी भी ऐसी बातों को अवॉइड करना। बाबा ने कहा था जो अवॉइड करेगा उनको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड समझते हैं ना, अवार्ड तोहफा मिलेगा आपको। कौन सी तोहफा? सबसे पहले खुशी मिलेगा, सबसे पहले हमारा मन शांत और शीतल और विवेकवान बन के रहेगा, विवेकवान बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगा, स्वच्छ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, स्वच्छ मन और तंदुरुस्त जीवन जीने की कला मिल जाएगा। तंदुरुस्त हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, मन सदा हैप्पी रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। जिनको बीमार होता है तो उनका चेहरा कैसे होता है, चेहरा कैसे होता है आपको पता है ना। इसके लिए मन की बीमारी तन के ऊपर प्रभाव डालता है, और सिर्फ तन का ही नहीं, सामने वालों को भी प्रभाव डालता है। सामने वालों को ही नहीं, सारी वायुमंडल को खराब करता है। करता है नहीं करता है, अनेक लोगों की खुशी को कम कर देता है, दूसरों का भी खुशी को भी कम कर देता है। इसके लिए आप सभी कौन है, खुशी बांटने वाले बच्चे। बाबा आज भी कहा मुरली में, ज्ञान बांटना, ज्ञान को देने का, दूसरों को ज्ञान देना। आप कितनी तकदीर बच्चे हैं, ज्ञान सुनते हो, ज्ञान को बांटते, ज्ञान को भी दूसरों को सुनाना, बाबा का एक दो पॉइंट सुनाना बाबा। तो कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, फैन गिरा है कोई दिक्कत नहीं, वो प्लग निकाल देना। इसके लिए बाबा आज भी हम बच्चों को ज्ञान सुनाने वालों को देख करके बाबा खुश हो जाता है, और इससे अपना तकदीर बढ़ जाता है। और ज्ञान सुनाएंगे तो आपका मस्तिष्क में सदा ज्ञान फ्लो होगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को भी शक्तिशाली बनेगा, इससे आधा बीमारी खत्म हो जाता है। इसके लिए बाप दादा ने हमारा योग अर्थात अच्छी बातों को दिमाग में रखना, बुरी बातों को अंदर आने नहीं देना, और दूसरे को बातों को, बुरी बातों को सुनना नहीं, देखना नहीं, बुद्धि में रखना नहीं, यही सच्ची पुरुषार्थ है, यही सच्चा योग है, यही सच्चा ईश्वरीय प्यार का संबंध का सबूत है। हम परमात्मा से प्यार कर रहे तो दूसरों की अवगुणों को देखना मना, हमारा प्यार नहीं बाबा को, वो हम बाबा को नहीं देख रहे हैं, इसके लिए दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। अवगुणों को देखना, वर्णन करना, इसको बाबा ने एक शब्द यूज किया, दूतीपन। दूतीपन, दूसरों की अवगुणों को देखना, सोचना, वर्णन करना व दूसरों के कानों तक पहुंचाना, ये जो काम जो करते हैं उनके लिए बाबा ने एक शब्द यूज किया है, उसका नाम है दूतीपन। हम तो इधर दूतीपन बनने के लिए नहीं आया, देवता बनने के लिए आए। देवताओं का लक्षण क्या है, दूसरों की अवगुणों को भी मिठाना, पाप को भी मिठाना, दुख को भी मिठाना। बाबा ने कहा आज तो दुख को भी मिठाना, जिसी का दुख है उसको कम कर देना, इसकी आपका योग बल, आपका खुशी की चेहरा, आपका अच्छी सोच, आपका रहम दिल, आपका कल्याणकारी भावना जो है ना, दूसरों का दुख को भी दूर कर सकता है, उसको ही योग कहते हैं। दूसरों के दुख को दूर करना, रहम दिल बनना, खुशी बांटना, ज्ञान बांटना, शक्ति बांटना, और सदा स्वयं एक अशरीरी बन करके। कुछ दिन पहले बाबा का मुरली में था, इधर गद्दी में बैठना अर्थात अशरीरी बन करके बैठना। देखो बाबा बैठने का भी विधि सिखाता है, कैसे बैठना, हम देहाभिमानी बैठ करके नहीं बैठना, हम आत्माभिमानी बन करके बैठना। ये कितनी बड़ी बात है बाबा ने, साथ साथ में बाबा ने कहा आपको दूसरों की प्रति आपका चेहरा देखते ही खुशी का अनुभव हो जाए, अच्छी फीलिंग आ जाए, अच्छा वाइब्रेशन हो जाए, अच्छा शांति का किरण। जब फूल खिलता है तो उसको देख करके लोग खुश हो जाते हैं ना, गुलाब देखते हुए कितना खुश हो जाता है, वह कोई भी अच्छे फूल देख करके लोगों को मन में खुशी आता है, वो तो चैतन्य गुलाब है, वह चैतन्य फूल है, सॉरी जड़ चित्र है, और उसको कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसको इतना खुशी पैदा कर सकता है। आप तो चैतन्य गुलाब है, चैतन्य फूल है, और हम सबके इन फूलों का माली बाप दादा है, हम बच्चों को इतनी खुशी दे रहे हैं। इसके लिए आपका खुशी की चेहरा देख करके दूसरों का भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बढ़ जाए, हेल्थ भी बढ़ जाए, उनको जहां स्वस्थ अच्छा है उधर हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जो जहां हैप्पीनेस बढ़ेगा वेल्थ भी बढ़ेगा, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि वो वेस्ट नहीं करेगा कोई भी चीज को, संकल्प वेस्ट नहीं करेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और दूसरी व्यर्थ चीज को अपने बुद्धि में नहीं रखेगा, उसके कारण उनको ऑटोमेटिकली उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और सुख ऑटोमेटिकली उनका महसूस होगा और साथ में शांति, मन शांत होगा। जिनका मन शांत होता है वहां एकाग्रता बढ़ जाता है, मन शांत होता है उनको अच्छी चीज को सोचने की आदत अच्छा बढ़ता है, मन शांत होता है उसको ऑटोमेटिकली प्रवाह का याद करना सहज हो जाता है, मन शांत है उसको उस अमृत वेले, बाबा ने कहा था आज भी अमृत वेले की उठ करके अच्छा याद करना ऑटोमेटिकली शक्ति मिलता है। और इसके लिए बाबा हमको बार बार कहते हैं आपकी मन की शुद्धता, मन की दिव्यता, मन की श्रेष्ठता, मन की जो संकल्प है सबसे बड़ी श्रेष्ठ है, खजाना है। इस समय में बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रूपी खजाना बांट रहा है, उसको अनुभव करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वस्थ बढ़ेगा, सुख ऑटोमेटिकली, सुख का इंडेक्स है ना बढ़ेगा। आजकल तो हर चीज में इंडेक्स कितना है मेजरमेंट करते हैं, अभी दुनिया में देखो दुख का बढ़ रहा है ज्यादा, पाप बढ़ रहा है ज्यादा, अशांति बढ़ रहा है ज्यादा, भय बढ़ रहा है ज्यादा और इनसिक्योरिटी अस्थिरता ज्यादा बढ़ रहा है, और एक तो व्यक्तिगत भी बढ़ रहा है और सारी सामाजिक समाज में भी बढ़ रहा है, उसके बीच में प्रकृति भी मनुष्य के ऊपर हावी हो गया, अर्थात प्रकृति भी मनुष्य को आजकल दुख देने में व उनको सजा देने में कार्य में आगे आ गया, सजा दे रहा है, भूकंप आकर के सजा दे रहे हैं, तूफान आकर के सजा दे रहे हैं, भारी बारिश आकर के सजा दे रहे हैं, और भी बहुत विधि से मनुष्य आत्माओं को और भी दुख को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की पाप का संकल्प, कुकर्मों की संकल्प, आत्मा जो व्यर्थ कर्म करके 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 इस धरती पर इतनी पाप का घड़ा भर गया है और उनको शब्दों में वर्णन करना असंभव है, ऐसी वायुमंडल की समय में आपको बचाना है, आपको रक्षा करना, आपका सेफ्टी कोई नहीं कर सकता है, आपकी श्रेष्ठ संकल्प योगी आपको बचा सकता है। आप अच्छा योग की बच्चे होंगे आपको रक्षा हो जाएगा, उस समय बाबा आपको मदद करेगा, कई भी होगा कई भी परिस्थिति में बाबा को याद करेंगे आपको रक्षा करेगा, नहीं तो इस संसार में किसी को कोई रक्षा नहीं कर सकते भले कितने भी अच्छे, परंतु बाबा का याद में रहेंगे बाबा आपको इतना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, भय की परिस्थिति हो जाए, दुख की परिस्थिति हो जाए, राक्षसों की बीच में भी हो, ऐसी परिस्थिति में भी आपको रक्षा बाबा करेगा। इसके लिए योग, खुद को रक्षा करना और संसार को भी रक्षा करने की विधि है और खुद को भी शुद्धि करने की विधि है और समस्त विश्व को भी शुद्धिकरण करना, पवित्रीकरण करना इसका विधि है। इसके लिए बाबा हमको राजयोग सिखाता है, क्योंकि बाबा ने कहता है हर मुरली में बाबा कहते हैं मैं यहां किसके लिए आया हूं, विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूं, विश्व में आपकी राजधानी स्थापन कराने के लिए आया हूं, विश्व में आपकी देवता बना करके ऐसी सुखी संसार बनाने के लिए आया हूं। मैं क्यों सिखाता हूं ये ज्ञान, क्यों देता हूं ये सारी वरदान, क्यों हमको योग सिखा रहे हैं, आपको ऐसी आत्मा बनाएंगे, एक एक आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्मों तक, हम आत्मा अविनाशी आत्मा है, एक बार बाबा की ज्ञान से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अनेक जन्मों तक अपने आप को सुख बढ़ेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं सत्युग में कोई को बीमार नहीं होगा, किसी के साथ आजकल देखो चाहे जितने भी गरीब हो चाहे जितने भी वो वीआईपी हो उनको भी बहुत प्रकार का बीमार। बाबा ने आज भी मैं मुरली में कहा राजाओं को भी बीमार होते थे, क्योंकि राजाए कई राजा तो है उनके पास संपत्ति है परंतु वो पवित्र नहीं, वो आत्मा पवित्र नहीं और साथ साथ में कोई न कोई कुकर्म करते हैं और उसका परिणाम उनके अंदर बीमारी भी होता है। बाबा ने कोई देवताओं का बीमारी होता है सुना, कई लक्ष्मी नारायण की फीवर आया सुना है? देखो राम ने जंगल में भी घूमा, लोगों ने कहते कहानी वास्तव में वो जंगल में घूमा नहीं है, सीता को लेकर के हुआ कोई वनवास में। यदि आप इन बात को भी थोड़े क्षण के लिए भी मान भी ले, परंतु उन्हें कभी उनके साथ डॉक्टर नहीं था, बीमार नहीं होते थे। क्यों? उनका मन स्वस्थ था, क्योंकि उनका तन स्वस्थ था और वो जहां गए पत्थर को भी उनका पांव लग गए तो वो फरिंदा बन गए, अहल्या का जीवन उद्धार हो गया अर्थात पतित को भी पावन बना दिया। जहां भी उनकी पांव रखा धरती आज भी वो पूजनीय बन गए। अर्थात बाप दादा इस धरती पर आकर के सारे विश्व को देखो, सारी विश्व को पवित्र करना करके भारत और विशेष करके भारत को स्वर्ग भूमि बना रहे हैं और सारे विश्व को मुक्ति दिला रहे हैं, पाप की दुनिया से मुक्ति दिला रहे हैं। इतनी पापाचार हत्याचार दुराचार किन शब्दों में के हो रहा है, परंतु उसको सब मुक्त करा करके मुक्ति धाम में आत्माओं को लेके जाएगा। अभी कभी भी ऐसी 2500 वर्ष तक उनको मुक्ति मिल जाएगा दोबारा ऐसा कर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोच नहीं सकते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ऐसे दुख को बांट नहीं सकते हैं, बीमार नहीं हो सकता है। ऐसी दुनिया को ही स्वस्थ समाज कहेंगे, सुखी समाज कहेंगे। ऐसी बेहद की सुखी समाज बाबा बना रहे हैं। बाबा के हर मुरली में बाबा कहते हैं मैं सत्य स्थापन करने के लिए आया हूं, आपका विश्व का मालिक बनाने के लिए, आपको स्वराज की अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। स्वराज स्वत ऊपर राज करने का और विश्व के ऊपर राज करने का, ये दोनों बाबा ने राजयोग की माध्यम द्वारा स्वीकार है। राजयोग द्वारा क्या कर रहे हैं, एक तो स्वराज अधिकारी, दूसरा विश्व के ऊपर भी अधिकारी। जो अधिकारी होता है वो गुलाम नहीं होता है, अधिकारी होता है उनको सदैव परोपकारी होता है, अधिकारी होता है कल्याणकारी होता है, परंतु अधिकार को दुरुपयोग करते हैं उनको भी सजा मिलता है। वो सजा ही दुख है, दुख की सजा है। और वो इंसान कोई न्यायालय से व अन्य स्थानों से छुटकारा मिल सकता है, परंतु दुख से छुटकारा मिलना ये सबसे बड़ी ज्ञान का रिजल्ट है, योग का रिजल्ट है, ईश्वरीय शक्तियों का रिजल्ट है। परंतु कोर्ट से दुख से व पाप से कभी कभी छुटकारा हो सकता है, परंतु उनको मन के अंदर दुख का जो संकल्प है व बीमारी आदि आता है ये दर्शाता है आत्मा कोई न कोई कुकर्म की हिसाब किताब अभी भी है। इसके लिए हम बच्चों को बाबा ने ऐसी एक दुनिया बना रहे, देवताओं की दुनिया बना रहे जिसमें बीमारी नहीं, दुख नहीं है, अशांति नहीं है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो उनकी संकल्प करता है वो उसी टाइम में हाजिर हो जाता है, जो उनकी जरूरत है वो उनको मिल जाता है, और जो ज्यादा जरूरत से भी ज्यादा लोग सोचते हैं वो तो क्या है। इसके लिए बाबा ने हर चीज उनकी उपलब्ध हो जाता है, उसको ही उसी दुनिया को ही कहते हैं देवताओं की दुनिया। हम जरूरत नहीं है खट्टा करके रखता है, इसको ग्रीड कहते हैं, लालच कहते हैं, जो लालच मनुष्य को कमजोर बना देता है, लालच मनुष्य को अधिकारी की बजाय अधीन बना देता है, लालच मनुष्य को स्वमान से गिरा देता है, लालच मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारी की ओर ले जाता है, लालच से बच के रहना और जरूरत से अधिक बाबा ऑटोमेटिकली बच्चों को देता है, हर बच्चों को देता है। और साथ साथ में हमको ये आदत डालना चाहिए हम सदा अमृत वेले, देखो हमारा घर में एग्जाम्पल देखो, आज भी अमृत वेले कौन कौन आए थे इधर योग में, हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हमारा रतनमणि दादी, उसका उम्र कितना है, 90 साल। उनको आयु छोटे आयु में ज्ञान में आए हैं, बाबा की गोद में आए, तब से लेकर के कितनी साल बाबा की गोद में फले, आज भी दादी अमृत वेले आकर के योग कराती है। उनके अंदर कितने योग की प्रति प्रेम है, श्रद्धा है और नियम प्रमाण हमको योग करना, मैं जाकर के लोगों को योग सिखाना व उधर बैठ भी जाना, कितने उनके अंदर दृढ़ विश्वास है। सोच, आप सभी जानकी दादी को जानते हैं, है? कौन कौन जानते, कौन बहुत लोग जानते, बहुत अच्छी है। जानकी दादी से मिले आप सभी, कौन कौन मिले आज करा करो, ये तो बहुत बच्चे मिले, कितनी भाग्यशाली है, है? प्रकाशमणि दादी को देखा था आप लोग, कौन कौन देखा था आज करा करो, थोड़े लोग हैं, कोई बात नहीं। देखो हमारा जानकी दादी अभी 100 साल में प्रवेश कर रहे हैं, 100 ईयर्स। इस 100 ईयर्स 99 का पूरा हो रहा है 100 ईयर्स में। इस उम्र में दादी अभी लंदन में गई है सेवा करने के लिए, वहां से अमेरिका जा रही है सेवा करने के लिए। आप सोचो 100 साल में मनुष्य की बॉडी क्या हो सकता है, उस आयु में कैसे आदमी चल सकेगा, फिर सकेगा, सोच सकेगा, उनकी आयु क्या हो सकता है। परंतु फिर भी इस उम्र में दादी इतनी देशों में पर्यटन करना व सेवा करने के लिए जाना, वाइब्रेशन फैलाने के लिए जाना, अच्छी बातों को सुनाने के लिए जाना, अच्छे लोगों को और भी वरदानों से भरपूर करना और दुखी और शोषित हिंसित आत्मा को भी मुक्ति दिलाना, ये कितनी बड़ी काम है। और इस उम्र में भी इतने काम करते हैं, लंबे आयु हो गए ना। देखो उनका राजयोग द्वारा उनका आयु भी बढ़ गया, बड़ा नहीं बड़ा, बड़ा है ना। संगम युग में भी उनका ये हमारा एग्जाम्पल है, राजयोग के माध्यम द्वारा बहुत बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करके और 100 साल तक जी करके इस संसार में एक एग्जाम्पल बन करके रहना, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारा घर में बाबा के इंस्टीट्यूशन में। इसके लिए हमको भी वही रास्ते पर चलना, वही काम करना। दादी इधर होती थी, शाम को रोज आकर के योग कराती थी, क्लास भी कराते थे। परंतु इस समय में दादी विश्व सेवा में अन्य स्थानों पर है, परंतु उसका टेंशन मधुबन में भी रहता है, हाँ? मधुबन में भी उनका टेंशन है, उसके वाइब्रेशन है। इसके लिए आप सभी ऐसी योग सीखो डेली और ऐसा योग अभ्यास करना है। हम सारी साल को योग की वर्ष के रूप में मना रहे हैं, हमारा यूनाइटेड नेशन भी योग वर्ष 21 जून को योग की दिवस के रूप में मना रहे हैं। अर्थात उनके अलग भाव हो सकता है, परंतु हम सब बाबा के बच्चे सारी साल को योग वर्ष योग के माध्यम द्वारा अपने आप को बाबा से बात करना। देखो आप सबको एक छोटे से कलेक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, एक मिनिस्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, एक गवर्नर व प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कितना दिन तक इंतजार करना पड़ता है। और बाबा कहते हैं मुझे मेरे पास मिलना हो तो अमृत वेले आ जाओ, अमृत वेले आप जहां आकर के बैठ जाओ, योग करो, मैं आप सबसे मिलेंगे, मैं खुद आकर के आप सबको मिलेंगे, वरदान देंगे, दृष्टि देंगे, शक्ति देंगे, हमारा मन की बातें आपकी मन की बातें सुनेंगे और मैं भी ऐसी श्रेष्ठ संकल्प कराएंगे। बाबा कराता है ना, आप अमृत वेले आकर के बैठ जाओ, चुप जे कुछ भी नहीं करना, आपकी मन की बातें बाबा सुनता है। आपके मन की संकल्पों को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए वो सब करता है। आपका भविष्य को उज्जवल, श्रेष्ठ, महान बनाने के लिए क्या वरदान चाहिए वो देता है। और आपकी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए क्या शक्ति चाहिए और आपकी जीवन में रास्ते पर आने वाले बाधाएं, विघ्न है व समस्या है, उन सबको कैसे दूर करना, उसके लिए भी पहले ही इन एडवांस बाबा सावधानी भी देता है और वरदान भी देता है, इससे मुक्त कराते। ये सच्चाई है। इसके लिए आपको योग में रोज योग करेंगे ना, जितना आपके जीवन में आने वाले कठिनाई, समस्याएं, विघ्न जो भी है ना, वो अपने आप बाबा दूर कर देगा। आपको ऐसी जीवन जीने की कला सिखा दे, हंसते हुए, खेलते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए, मौज करते हुए, मन मना भव मध्याजी भव। मन बाबा को दे दिया, मध्याजी व्रत अर्थात आनंद में रहना, मध्याजी भव मना खुशी में रहना, मध्याजी भव मना समस्या मुक्त रहना, मध्याजी भव अर्थात निर्विघ्न रहना। यदि आए तो भी उसको अपने आप दूर हो जाए। इसके लिए बाबा जो अमृत वेले आकर के बाबा के साथ रूहान करते हैं, अयस्त ऑफ द अयस्त, होलीएस्ट ऑफ द होली, बाप दादा हम सबसे मिलने के लिए, हम सबको योग सिखाने के लिए, हम सबको वरदान देने के लिए, हम सबको अपने गोद में उठाने के लिए, अपने गोद में उठा करके ले जाने के लिए इस धरती पर आया है और सूक्ष्म वतन से आवाहन कर रहा है। अभी सूक्ष्म वतन से हम बच्चों को आवाहन करते हैं, मीठे बच्चे आओ, मेरे प्यारे बच्चे आओ, मेरे लाडले बच्चे आओ, मेरे ओवनहार देवता बच्चे आओ, मेरे विश्व के मालिक बच्चे आओ, मेरे को इस धरा पर प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे आओ। कितनी बाबा ने कितनी मीठी बातें कहता है, है? उसकी बातें सुने तो कितने में आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, खुशी की झलक इतनी बिखेर दे में आपकी आनंदमय जीवन जीने की तन्मयता के द्वारा इतने आनंद आ जाए। ऐसी बाबा को आपको कितनी प्यार से याद करना चाहिए, उनकी हर बातों को सुनना चाहिए, हर बातों को जीवन में उतारना चाहिए, तभी तो स्वस्थ जीवन बनेगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा, और वही सच्ची जीवन मुक्ति है। और वही ऑटोमेटिकली आपको स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने की कला। दुनिया भी क्या है, दुख की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कितने दुख है इस दुनिया में उनकी शब्दों में वर्णन करना कम, डिक्शनरी खत्म हो जाएगा। इसके लिए दुख से बाबा मुक्त करा रहे हैं। और दुनिया हर व्यक्ति सुबह से शाम तक कोई न कोई कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और नफरत का बीज बो रहे हैं, इतने हिंसा कर रहे हैं, इतनी दुनिया में हिंसा, अनेक प्रकार की हिंसा, खुद की भी हिंसा, पशु प्राणियों को भी खून करना वो भी हिंसा है, पशु को भी प्राणियों को भी खून करते हैं अपने पेट भरने के लिए वो भी हिंसा है, और इंसान को इंसान काट रहा है वो भी पाप है, इतनी उसका व्यापक हो रहा है। और उसके सिवाय बहुत है, उसकी वर्णन करना असंभव, संभव तो है परंतु बात कहने की जरूरत नहीं आप लोगों को। इसके लिए हम तो सुखी जीवन जीना अर्थात उसके लिए विधि बाबा ने बताया, किसी को भी दुख ना देना, दुख ना लेना, किसी को भी दुख, पशु को भी दुख नहीं देना, पंछी को भी दुख नहीं देना, प्राणियों को भी दुख नहीं देना, इंसान को बिल्कुल नहीं देना। परंतु दुनिया क्या है, हिंसक, हिंसा इतनी बढ़ रहा है, जितना हिंसा बढ़ेगा उतना ही बीमारी बढ़ेगा, उतना ही दुख बढ़ेगा, उतना ही मनुष्य अशांति अनेक प्रकार की भय होगा। बाबा कहते हैं आज भी मुरली में बाबा ने कहा था, जो अच्छे बच्चे हैं, सेवादारी बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे और मेरे लाडले बच्चे हैं, वो स्वप्न में भी विश्व कल्याण के बारे में सोचेगा, उनको स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, स्वप्न में भी उनको भय नहीं आएगा, स्वप्न में भी बीमारी नहीं आएगा, स्वप्न में भी उनको आनंदमय जीवन। आत्मा स्वप्नावस्थे में है, निद्रावस्थे में है, रेस्ट में है, उसमें भी उनको अच्छी अच्छी संकल्प आएगा। सिर्फ उनको ही नहीं है, दूसरों को भी वो वाइब्रेशन जाएगा। एक तो उनको खुद अपना नेचर का अनुभव हो सकता है, साथ साथ में उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के हम रेस्ट कर रहे हैं तो उसका वाइब्रेशन भी बहुत लोगों को पास जाए, भक्तों के पास जाएगा, संबंधियों को भी फीलिंग आएगा, दूर रहने वालों को भी अनुभव हो जाएगा नजदीक बनकर। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है, सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म ज्ञान है व सूक्ष्म विज्ञान है। वो कहते हैं वाइब्रेशन, अभी तो आजकल वाइब्रेशन की दुनिया है, ये वास्तव में ऐसी वाइब्रेशन को फैलाना है, यही योग है। ऐसी स्वप्न में भी योग के माध्यम द्वारा दूसरों को शक्ति को प्रदान करना एक सच्चा योग है, सच्ची संस्कार है, सच्ची विद्या है, सच्ची जीवन है। इसके लिए आप बच्चों को, आप सभी कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, इधर आकर के ऐसी योग सीख रहे हैं और इसी योग के माध्यम द्वारा आप लोगों को इतनी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए आज से कोई भी अपनी चाय सेंटर पर जाएंगे, उधर भी आप लोग योग करना, और संभव होगा तो सेंटर पर जाना, नहीं तो अपने घर में भी योग करना, और क्लास कभी मुरली किसी कीमत में मुरली मिस नहीं करना। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबको यही मैं एडवाइस कहो, वो बाबा की बातें कहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे खुशी है बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बहुत बच्चे करीब 35, 36, 37 ईयर से जो आते थे, आजकल बड़े बड़े अच्छे टीचर्स बने, लीडर्स बने और बड़े बड़े सेवा कर निमित्त बने और इतने इतने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बने, खुद इतने आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको भी उसी रास्ते पर चलना है, आपको मौका मिला है और ऐसे मौके को यूज करके आपका जीवन को धन्य धन्य बनाना, आपको देख करके लोग खुश हो जाए, आपकी चेहरा देख करके लोग खुश हो जाए, आपका सोच को देख करके लोगों को खुश हो जाए, आपका संस्कार को देख करके लोग खुश हो जाए, आपका शांत और शीतल और मन को देख करके लोग, तो मंत्र का जादू लग गए, बच्चे भी जादूगर हैं, आपका देख करके दूसरों को भी जादू लग जाए। बाबा ने कहा था जैसे वायरस बीमारी है ना, किसी को फ्लू हो जाता है, देखो किसी के आंख का बीमारी होता है, उसको आंख देखे तो दूसरों को भी आंख खराब हो जाता है, किसी के फीवर की व फ्लू का बीमारी है, उनके बगल में खड़ा रहो उनका बीमारी आ जाता है, आता है ना। इसके लिए आजकल तो मुंह भी बंद करके जाता है, हाथ भी, किसी के हॉस्पिटल में जाना है पहले हाथ धो, बाहर रहे तो हाथ धो, मुंह में भी पट्टी बांध के जाओ। और आजकल तो आप देखते नहीं, रास्ते पर कोई भी शहर में जाता है सारी मुंह को बंद करके जाता है, सारी धकेल के जाता है, क्यों जाता है, समाज में इतनी बीमारियां है, एक तो वायुमंडल खराब है, दूसरा अशुद्ध हवा है, और दूसरा अनेक प्रकार की कीटाणु इतनी है, और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रास्ते पर छोड़ के जाता है व्हीकल्स के माध्यम द्वारा, और ये सारी बीमारी का जड़ है बीमारी। ऐसी दुनिया में हम बच्चों को अपने आप को रक्षा करना और अच्छे वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा दूसरों को ये वॉइसलेस बनेगा, आपका वायरलेस का काम करेगा। जो पवित्र आत्मा बनेगा वो दूसरों को भी पवित्रता की ओर प्रेरणा देंगे, खुशी देंगे, उनको दूर से ही खुशी बांटने। जैसे आजकल तो वायरलेस की दुनिया है ना, है? कोई भी चीज तो वायरलेस से कनेक्टेड है। ऐसी आत्मा भविष्य में भी, इसका शुरुआत संगम युग में होगा, भविष्य में की दुनिया में केवल संकल्पों के आधार से कर्म चलेगा, सेवा चलेगा और भविष्य की जीवन बनेगा। ऐसी वॉइसलेस बनेंगे तो वायरलेस का काम करेगा और दूर बैठे ही अपने आप को देवता का अनुभव करेगा, दूसरों को भी अनुभव करेगा। वही सुखमय जीवन, वही शांतमय जीवन, वही समृद्धमय जीवन जीने की कला। मुझे आशा है आप सभी बच्चे ऐसी जीवन जीने की कला सीख के जाएंगे, ऐसा योग सीख के जाएंगे और ऐसी सेवा के लिए अपने आप को पात्रधारी बना के जाएंगे, योग्य आत्मा बना के जाएंगे। यही इधर आने का लक्ष्य है। मुझे विश्वास है आपको अपनी पेरेंट्स व अपनी गाइड्स व अपनी सभी आपको मददगार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ आपको ही करना। आपकी पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए पुरुषार्थ आप करेंगे, मदद बाबा भी खड़ा है, आपकी बहन भाई भी खड़े हैं, आपकी हर व्यक्ति सहयोग दे सकता है, परंतु आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं दिखाएंगे, विश्वास नहीं जताएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। इसके लिए आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाबा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपकी संकल्पों के ऊपर निगरानी होना चाहिए, आपके बोल के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, आपके दृष्टि पर विशेष ध्यान होना चाहिए और आपका हर चीज में ध्यान होना चाहिए, कान पान से लेकर के हर व्यवहार। यही आपका योगी जीवन का लक्षण है। कान पान से लेकर के दृष्टि वृत्ति से लेकर के संकल्पों से लेकर के बाबा की महावाक्यों को आचरण में लाना ही योग है, इसके दूसरे कोई योग नहीं है। दूसरा तो वियोग ही बनाएगा, दूसरे लोग तो रोगी बनाएगा, दूसरे लोग तो बीमार बनाएगा, परंतु ये स्वस्थ और सुखी जीवन की विधि है। मुझे है, मेरा टाइम पूरा हो रहा है, इसके लिए आप सबको इतने ही मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप बच्चे जो है भगवान समान कहाँ जाता है। मैं बच्चों को जोर से नहीं कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं। इसके लिए आप इस बात को ध्यान रखना और इसको जीवन में अमल में लाना, ऐसे बच्चों को सदा स्वस्थ बने, सुखी बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, ऐसी खुश नवाब चेहरे को देखने के लिए हम सब खुशी महसूस करेंगे। ऐसे बच्चों को प्रणाम, ओम शांति, नमस्ते।